मरकुस बाब
9।
तब यीशु ने लोगों से कहा,
मैं तुमसे सच ही कहता हूं, यहां ठहरे हुए तुम में से चंद लोग मौत का मजा नहीं चखेंगे जब तक यह न देख लें कि खुदा की सल्तनत कुदरत व इक्तदार के साथ रहे।
6 दिन बाद ऐसा हुआ कि यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर ऊंचे पहाड़ पर चले गए। वहां उनके सिवाय और कोई न था। ये शागिर्द यीशु को देख ही रहे थे कि वह बदल गया। यीशु के कपड़े सफेद चमक रहे थे। इतने सफेद कपड़े तैयार करना किसी के लिए मुमकिन न था। तब मूसा और एलिया वहां जाहिर हुए और यीशु के साथ बातें करनी शुरू की। पतरस ने यीशु से कहा,
ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना बेहतर है। हम यहाँ 3 शामियाने निस्फ करेंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए।
पतरस उन्हें जानता था कि क्या कहें, क्योंकि वह और दीगर शागिर्द बहुत ज्यादा खौफजदा थे। तब इब्र आया और उन पर साया फगन हुआ। उस बादल में से एक आवाज आई,
ये मेरा चहीता बेटा है, इसके फरमा बरदार हो जाओ।
तब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने आँख खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ यीशु उनके साथ वहाँ थे। यीशु और शागिर्द पहाड़ से नीचे उतरकर वापस आ रहे थे। उन्होंने उसको हुक्म दिया,
जो कुछ तुमने पहाड़ पर देखा है उसको किसी से न कहना, इब्न आदम के मर कर फिर जिंदा होकर आने का इंतजार करो।
इस तरह शागिर्दों ने यीशु की बात मानी और जो कुछ देखा उसके बारे में कुछ न कहा। लेकिन मरने के बाद जी उठने का मतलब क्या है, इस सिलसिले में आपस में बातें करने लगे। शागिर्दों ने यीशु से पूछा,
शरीयत के मुअल्लिमीन कहते हैं कि एलिया को पहले आना चाहिए, उसकी वजह क्या है?
यीशु ने जवाब दिया,
उनका कहना दुरुस्त है, एलिया को पहले आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह होना चाहिए उस तरह वह हर चीज को रास्ते पर लाएगा। लेकिन इब्न आदम बहुत सी तकालीफ को बर्दाश्त करेंगे और लोग उनको हकीर जानेंगे, सहीफा ऐसा क्यों कहता है? लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, एलिया तो कभी आ चुका है और फिर लोग अपने दिल में जैसा चाहा वैसे ही उसकी बुराई की। उसके साथ इस तरह के सलूक की बात सहीफों में पहले ही लिखा हुआ था।
फिर यीशु, पतरस, याकूब और यूहन्ना दूसरे शागिर्दों के पास गए तो उन शागिर्दों के इतराब बहुत से लोग जमा हुए थे। शरीयत के मुअल्लिमीन उनके साथ बहस कर रहे थे। जब इन लोगों ने यीशु को देखा तो ताज्जुब हुए और इसका इस्तकबाल करने के लिए उसके नजदीक पहुँचे। यीशु ने उनसे पूछा,
तुम शरीयत के मुअल्लिमीन के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे थे?
मजमे में से एक आदमी ने कहा,
अरे उस्ताद, मेरे बेटे को बदरू का असर हो गया है। उस बदरू ने मेरे बेटे की बातचीत करने की सलाहियत रोक ली है, जिसकी वजह से उसको आपके पास लाया हूँ। वह बदरू जब भी उस पर काबिज होती है तो उसको जमीन पर गिरा देती है। मेरा बेटा मुंह से कफ गिराता है और दांतों को पीसता है और बहुत ही सख्त बन जाता है। इसको इस बदरू से आजाद कराने के लिए मैंने तेरे शागिर्दों से पूछा, लेकिन ये काम उनसे मुमकिन ना हो सका।
यीशु ने जवाब दिया,
ऐ बेतकाद नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ मस्जिद कितनी मुद्दत रहूं और कितनी मुद्दत बर्दाश्त करूं? इस लड़के को मेरे पास लाओ।
तब शागिर्द उस लड़के को यीशु के पास लाए। उस बदरू ने यीशु को देखते ही उस लड़के पर हमला कर दिया। वह लड़का नीचे गिरा और मुंह से कफ गिरता हुआ तड़पने लगा। यीशु ने उस लड़के के बाप से पूछा,
कितने अरसे से यह कैफियत है?
बाप ने उस बात का जवाब दिया,
बचपन ही से ऐसा होता है। बदरू अक्सर उसे आग और पानी में खींचती है ताकि उसे हलाक करे। अगर आपसे ये बात मुमकिन हो तो बराए मेहरबानी हमारे ऊपर रहम और मदद करें।
यीशु ने उसके बाप को जवाब दिया,
तू ऐसी बात क्यों कहता है? अगर आपसे हो सके, ईमान रखने वाले आदमी के लिए हर बात मुमकिन होती है।
उस लड़के के बाप ने पुरजोशी से जवाब दिया,
मैं यकीन करता हूँ और ज्यादा पुख्ता यकीन के लिए मेरी मदद कर।
वहाँ पेश आए वाकियात को देखने के लिए तमाम लोग दौड़ते हुए आए। इस वजह से यीशु ने उस बदरू से कहा,
ऐ बदरू, तूने इस लड़के को बहरा और गूंगा बना दिया है। मैं तुझको हुक्म देता हूँ कि इस लड़के से बाहर जा और इसमें दोबारा दाखिल मत हो।
वह बदरू चिल्लाई, वह बदरू उस लड़के को दोबारा जमीन पर गिरा कर तड़पा कर बाहर आई। वह लड़का मुर्दे की तरह गिरा हुआ था। कई लोग समझे कि वो मर गया है, लेकिन यीशु ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उठाया और खड़ा होने में उसकी मदद की। यीशु जब घर में चले गए तो उसके शागिर्दों ने तनहाई में उससे दरियाफ्त किया,
उस बदरू से नजात दिलाना हमसे क्यों मुमकिन न हो सका?
यीशु ने जवाब दिया,
इस किस्म के बदरू से दुआ के जरिए ही से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
उसके बाद यीशु और उसके शागिर्दों ने उस मुकाम से निकलकर गलील के रास्ते से सफर किया। यीशु का मकसद ये था कि लोगों को उस बात का अंदाजा न हो कि वह कहाँ है, क्योंकि वह अपने शागिर्दों को तनहाई में यकीन दिलाना चाहते थे। यीशु ने उनसे कहा,
इब्न आदम को लोगों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको कत्ल करेंगे, कत्ल होने के तीसरे दिन वो जिंदा होकर दोबारा आएगा।
लेकिन यीशु ने शागिर्दों से जो कहा वह उसका मतलब न समझ सके और उस बात को वह पूछते हुए घबरा रहे थे। यीशु और उसके शागिर्द कफरनहूम गए। वह जब एक घर में थे तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा,
आज रास्ते में तुम बहस कर रहे थे, वो मैंने सुन ली, तुम किसके मुतालिक बहस कर रहे थे?
लेकिन शागिर्दों ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि वह आपस में बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे अजीम कौन है। यीशु बैठ गए और 12 रसूलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा,
तुम में से अगर कोई बड़ा आदमी बनने की आरजू करे तो उसको चाहिए कि वो उन सबको खुद से बड़ा समझे और उनकी खिदमत करे।
फिर यीशु एक छोटे बच्चे को बुलाकर उस बच्चे को शागिर्दों के सामने खड़ा करके उसको अपने हाथों में उठाकर उनसे कहा,
जो कोई मेरे नाम पर अपने बच्चों में से एक को कबूल करता है गोया वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है गोया वो मुझे नहीं बल्कि उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है।
उस वक्त यूहन्ना ने उससे कहा,
ऐ उस्ताद, किसी शख्स को तेरे नाम के तवस्सुत से बदरू से छुटकारा दिलाते हुए हमने देखा है, जबकि वो हमारा आदमी नहीं है। इस वजह से हमने उसे कहा कि रुक, क्योंकि वो हमारे गिरोह से ताल्लुक नहीं रखता था।
यीशु ने उनसे कहा,
उसको मत रोको, मेरा नाम लेकर जो मौजज़े दिखाएगा वो मेरे बारे में बुरी बातें नहीं कहेगा। जो शख्स हमारा मुखालिफ नहीं वो हमारे साथ है। मैं तुमसे सच ही कहता हूँ कि तुमको अगर कोई आदमी मसीही समझकर पीने के लिए पानी दे तो जरूर उसको उसकी नेकी का बदला मिलेगा। इन छोटे बच्चों में से किसी एक को अगर कोई गुनाह के रास्ते पर चलाने वाला हो तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने गले से चक्की का एक पार्ट बांध कर समंदर में डूब जाए। अगर तेरा हाथ तुझे ही गुनाहों में फंसाता रहा हो तो बेहतर होगा कि उसको काट ही डाल, दोनों हाथ रखते हुए न बुझने वाली आग के जहन्नम में जाने से बेहतर ये होगा कि माजूर होकर अबदी जिंदगी ही को पाए, और वो रास्ता ऐसा होगा कि जहां की आग हरगिज न बुझेगी। अगर तेरा पांव तुझे गुनाहों के कामों में मुलव्विस कर रहा हो तो उसको काट डाल, दोनों पैर रखते हुए दोजख में फेंक दिए जाने से बेहतर यह है कि लंगड़ा बनकर रहे। तेरी आंखें अगर तुझे गुनाहों में डाल रही हों तो दोनों आंख रखते हुए दोजख में जाने के बजाय बेहतर यही होगा कि एक ही आंख वाला होकर हमेशा की जिंदगी को पाए। दोजख में इंसानों को खाने वाले कीड़े कभी नहीं मरते और न ही दोजख की आग कभी बुझती है। हर आदमी को आग से सजा दी जाएगी।
उसने कहा,
नमक एक बेहतरीन चीज है, लेकिन अगर नमक अपने जायके को जाय कर दे तो तुम उसको फिर दोबारा नमक नहीं बना सकते। इसी वजह से तुम अच्छाई का मुजस्मा बनो और एक दूसरे के साथ अमन से रहो।